प्रिय श्रोताओ नमस्कार। कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से होशे नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है छुटकारा देने वाला। श्रोताओ हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों और परिवारों के साथ बैठे हैं। मैं आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से होशे नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि इसराइली सोने के बछड़े बनाकर और पाप में जीवन जीकर परमेश्वर के विरोध चल रही थी और तब परमेश्वर ने उन्हें दंड देने की बातें कही। तो मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें फिर से यह जीवन दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचनों में से पढ़ते और सुनते हैं, सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो पिताजी आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। विशेष करके अपने उन श्रोता भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय निराश हैं, परेशान हैं, बीमार और तनाव में हैं। पिताजी आप उन पर दया दृष्टि करें, उनके जीवन को आप स्पर्श करें ताकि वे इस बात को समझने पाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं। जी हाँ, आज आप उनसे बातचीत करें, उनकी सहायता करें, हम सबों को आशीषित करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि इसराइली परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे थे। इसराइल ने सोचा कि वे समृद्ध हैं और समृद्धि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट करती है, इसलिए परमेश्वर उनसे प्रसन्न है, परंतु उनकी समृद्धि ही उनके लिए परमेश्वर का दंड हो गई थी और आने वाले समय में उन्हें हर वस्तु की कमी होगी। वे देश से बाहर जाएंगे जहां परमेश्वर ने उन्हें अशुद्ध वस्तुएं खिलाई। जी हां, क्योंकि व्यवस्था के उल्लंघन में उन्होंने यही बात छोड़कर सब अनर्थ किया था। उन्होंने पाप तो किया परंतु आनंद नहीं ले पा रहे थे, वे पाप की गहराइयों में पहुंच गए थे, परमेश्वर का दंड निश्चित था। तो आइए हम पढ़ते हैं होशे नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं और इसराइल यह जान लेगा, उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यद्वक्ता तो मूर्ख और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। इसराइल अपनी आत्मिकता से भटक गया था, क्यों? उनके अगुओं के कारण। मेरे मित्रों, जब मैं सेमिनारी में अध्ययन करने के लिए गया था तब विवाद होता था रूढ़िवादियों में और आधुनिक विचारकों में। आधुनिक विचार सामाजिक सुसमाचार के समर्थक थे, वे भले काम करने वाले थे और दावा करते थे कि उनके नैतिक मानदंड बहुत ऊंचे हैं। मैं उनकी बात से सहमत था क्योंकि रूढ़िवादियों में नैतिकता का स्तर उनके बराबर ऊंचा नहीं था। इस बात से मुझे दुख होता था कि मुक्त विचारकों में हमसे अच्छा कुछ है। मैंने उन्हें ध्यान से देखा कि उनका नैतिक स्तर वास्तव में उतना ऊंचा नहीं था। होशे ने यह कहा और आप उसे दोष दे सकते हैं, भविष्यद्वक्ता तो मूर्ख ठहरेगा। एक युवक येल विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। वहां एक विशिष्ट मुक्त विचारक पादरी था। वह नीति शास्त्र सिखा रहा था। वह सिखाता था कि देश के कानून से भी बड़ा कानून है। उस युवक ने सोचा कि यदि यह नीति शास्त्र है तो वह उसका अवश्य पालन करेगा, और इस शिक्षा के कारण वह आगे चलकर बड़ी परेशानी में पड़ गया। मेरे प्रियो, आज तो मुक्त विचारकों का अपना नैतिक स्तर भी नहीं रहा है। मुझे एक पुलिसकर्मी ने बताया कि एक स्थान पर तो कलिसिया ही नशीले पदार्थ बेच रही थी। होशे कहता है कि भविष्यद्वक्ता मूर्ख है, उसने देश को पथभ्रष्ट कर दिया है। रूढ़िवाद कभी कभी विचित्र सा लगता है, परंतु वह देश मुक्त विचारकों की सी हानि नहीं पहुंचाता है। मेरे मुक्त विचारक शिक्षक प्रसिद्ध प्रचारकों में से कुछ रूढ़िवादियों को निर्बुद्धि कहते थे, परंतु इन प्रचारकों की बातें आज सच सिद्ध हो रही है, और उन मुक्त विचारक शिक्षकों की बातें कदापि सत्य नहीं निकली। इसराइल ने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था, जिसके कारण परमेश्वर उन्हें दंड देने जा रहा था। उनमें आत्मिक विवेक था ही नहीं। आज हमें अनेक पत्र मिलते हैं और लोग विभिन्न धार्मिक पंथों से विश्वास में आ रहे हैं। हम पत्र पढ़कर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, परंतु प्रश्न यह है कि वे वहां फंसे कैसे थे। अज्ञान और आत्मिक विवेक की कमी ही एकमात्र कारण है। परमेश्वर कहता है कि वह इसराइल को दंड देगा, और वह हर एक देश के लिए चेतावनी भी है जो मसीही होने का दिखावा करते हैं। होशे 9 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, एप्रेम मेरे परमेश्वर की ओर से पहरुआ है, भविष्यद्वक्ता सब मार्गों में बहेलिए का फंदा है, और वह अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। वह कहता है, एप्रेम मेरे परमेश्वर की ओर से पहरुआ है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय वहां कुछ रूढ़िवादी हठधर्मी भी थे जो प्रजा को परमेश्वर के आने वाले दंड की चेतावनी दे रहे थे। लिखा है, भविष्यद्वक्ता सब मार्गों में बहेलिया का फंदा है। मेरे प्रियो, यह बड़ी कठोर भाषा है। आज किसी मुक्त विचारक से बातें करते समय मैं तो ऐसी भाषा काम में नहीं ले पाऊंगा। आज विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता की बात तो की जाती है, परंतु रूढ़िवादी को स्वतंत्रता नहीं कि अपने विचार व्यक्त करे। मुक्त विचारक जहां भी हो फंदा ही है, वे मनुष्य को पथ भ्रष्ट करते हैं। आज परमेश्वर का नाम प्रार्थना और आराधना की अपेक्षा कसम खाने में काम में लिया जाता है, जो परमेश्वर की निंदा है। होशे नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, वे गीबा के दिनों की भांति अत्यंत बिगड़े हैं, इसलिए वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, परंतु परमेश्वर दंड देना चाहता है, और इसमें यदि, परंतु तथा और का स्थान नहीं है। होशे 9 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, मैंने इसराइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाग पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है, परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए थे वे उसी के समान घिनौने हो गए। दाखलता और अंजीर इसराइल के चिन्ह हैं, और संपूर्ण धर्मशास्त्र में व्यक्त है। उन्होंने बछड़े की तो पूजा की, परंतु अहाब और इजेबेल रानी ने बाल देवता की पूजा भी आरंभ कर दी थी। उन्होंने बाल के हजारों पुजारी वहां पर रखे थे। होशे 9 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, एप्रेम का वैभव पक्षी के समान उड़ जाएगा, न तो किसी का जन्म होगा, न किसी को गर्भ रहेगा, और न कोई स्त्री गर्भवती होगी। मेरे मित्रों, क्या आपने कभी बत्तखों का शिकार किया है? आप पूरी रात उनकी प्रतीक्षा में बैठते हैं और दिन तड़के ही कोई आकर बंदूक चला देता है। आप देखते हैं कि सब बत्तखें उड़ गई। एप्रेम की महिमा भी ऐसी ही चली गई। इस देश ने प्राचीन संसार पर गहरा प्रभाव डाला था, परंतु अब उसकी महिमा एक चिड़िया के समान उड़ गई थी। इसलिए होशे 9 उसके 12 पद में आगे लिखा हुआ है, चाहे वे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर बड़े भी करें, तो भी मैं उन्हें यहां तक निर्वंश करूंगा कि कोई भी न बचेगा। जब मैं उनसे दूर हो जाऊंगा, तब उन पर हाय। यह उनका एक और दंड था। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि वह उसे प्रतिज्ञा का देश देगा और उसके वंशजों की संख्या अनगिनत करेगा, समुद्र की रेत के कण और आकाश के सितारों के बराबर। परमेश्वर ने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, परंतु उन्होंने पाप किया। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें यहां तक निर्वंश करूंगा कि कोई भी ना बचेगा, कोई भी ना बचेगा। जी हां, यह उस जाति के सर्वनाश की भविष्यवाणी नहीं है। परमेश्वर के कहने का अर्थ है कि परमेश्वर के लिए खड़ा होने वाला एक भी पुरुष न होगा। होशे नबी की पुस्तक 9 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जैसा मैंने सोर को देखा, वैसा एप्रेम को भी मन भावने स्थान में बसा हुआ देखा, तो भी उससे अपने बच्चों को घातक के सामने ले जाना पड़ेगा। सोर देश उस समय एक महान व्यापारिक केंद्र था। उसके प्रभाव में आकर इसराइल भी व्यापारिक केंद्र बन गया था, परंतु उनकी समृद्धि झूठी थी और प्रजा इस समृद्धि के कारण भ्रम में पड़ गई थी। होशे 9 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा, उनको दंड दे, तू क्या देगा? यह कि उनकी स्त्रियों के गर्भ गिर जाएं और स्तन सूखे रहें? उनकी स्त्रियां बांझ थी। यह परमेश्वर का दंड ही तो था। मेरे प्रियो, आज जब हम उन महिलाओं को देखते हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। मेरे प्रियो, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे। होशे नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 15 पद में लिखा हुआ है, उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, वहीं मैंने उनसे घृणा की, उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा, उनसे फिर प्रीति न रखूंगा, क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करने वाले हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है, गिलगाल में उनके पाप के कारण उन्हें दंड मिला, जबकि मैं तो उनसे प्रेम करता था। मैं तुम्हें फिर दंड दूंगा और तुम कहोगे कि परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता है। होशे 9 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है, एप्रेम मारा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई, उनमें फल न लगेगा, चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी जने, तो भी मैं उनके जन्म हुए दुलारों को मार डालूंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर भूमि की उपज को ही दंड नहीं देगा, परंतु बच्चों के जन्म को भी वह दंड देगा। यह परमेश्वर का भयानक दंड है। आज हमें भी अपने जीवन पर परमेश्वर के उस दंड को आने देने के लिए बचना है कि हम उससे प्रेम करें, उसकी बातों को माने। होशे 9 अध्याय उसके 17 पद, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, लिखा है, मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वे जाति जाति के बीच मारे मारे फिरेंगे। परमेश्वर उन्हें देश निकाला दे देगा और वे अन्य जातियों में भटकते रहेंगे। ये 10 गोत्र एक बार बंधुआई में गए तो फिर स्वदेश नहीं लौटे। यहूदा के साथ वे लौटे होंगे परंतु अपनी पहचान खोकर। मेरे प्रियो, हमने देखा है कि यूसुफ और मरियम जो यहूदा के गोत्र से थे ऊपरी क्षेत्र गलील में रहते थे। बेबीलोन से लौटने के बाद अपने देश में भी वे इस प्रकार बिखर गए थे कि कौन किस गोत्र का है कहना संभव नहीं था। मेरे प्रियो, यहीं पर अध्याय 9 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 10 से जारी रखेंगे। अध्याय 10 का विषय है इसराइल सूखी दाखलता होगा। हम इसराइल पर परमेश्वर के दंड की घोषणा देख रहे हैं। इस अध्याय में एक और कुकर्म देखेंगे जिसके कारण इसराइल को परमेश्वर ने दंड दिया। हम देखेंगे इसराइल एक फलहीन दाखलता होगा। होशेनबे की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इसराइल एक लहलाती हुई दाखलता सी है जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु ज्यों ज्यों उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे ही वे सुंदर लाटें बनाते गए। वह यह नहीं कहता है कि इसराइल एक फलहीन दाखलता है, क्योंकि इस समय इसराइल समृद्धि की चरम सीमा पर था। परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी तो दी परंतु वह अब भी उनके लिए अच्छा ही था जिसमें बहुत से फल भी लगे, अर्थात वह एक ऐसी दाखलता थी जो अपने फल व्यर्थ गंवा रही थी। मनुष्यों के लिए अपने फल उत्पन्न करना अच्छा है। परमेश्वर ने इसराइल को समृद्धि दी परंतु उन्होंने परमेश्वर को समृद्धि का श्रेय नहीं दिया। उनका शहरी क्षेत्र भी बहुत विकसित हो गया था। समृद्धि के कारण वे अंधे हो गए थे और अपनी वास्तविक दशा को नहीं देख पा रहे थे। आज हम में से कई विश्वासी ऐसे ही हैं। वे अपने पुराने जीवन को पुराने स्तर को भूलकर उस दिन को देखना नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया है। ऐसी ही दशा यहां पर हम इसराइलियों की देखते हैं। मेरे मित्रों, किसी देश को महान बनाने के लिए बाइबल आवश्यक है। कोई देश महान हो सकता है परंतु स्मरण रखें, अनेक महान राष्ट्र आज मलबे का ढेर बने हुए हैं। क्यों? परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया है। लिखा है, ज्यों ज्यों उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। उनकी जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ वेदियां भी संख्यों में बढ़ती चली गई। वृद्धि हुई अर्थात पाप बढ़ता गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 1 पद में प्रभु यीशु ने अपने यहूदी अनुयायियों से कहा था, सच्ची दाखलता मैं हूं। वे अब यह सोच रहे थे कि यहूदी जाति के साथ उनकी पहचान का अर्थ था कि वे परमेश्वर के चुने हुए हैं, अतः परमेश्वर के साथ उनका संबंध अपने आप ही जुड़ जाता है। परंतु यह सच नहीं है। जी हाँ, प्रभु यीशु अपने नाम के निमित्त एक जाति तैयार कर रहा है, अर्थात कलीसिया, उसकी देह जिसका वह सिर होगा। जब प्रभु यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं, तब उसके कहने का अर्थ था कि अब उन्हें मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के पास आने के लिए उन्हें प्रभु यीशु के द्वारा आना होगा। होशे 10 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है, उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। लिखा है उनका मन बटा हुआ है। वे परमेश्वर की उपासना के लिए पर्वों पर यरूशलेम जाते तो थे, परंतु साथ ही साथ वे उस सोने के बछड़े और बाल देवता की पूजा भी करते थे। एक दिन परमेश्वर की आराधना तो एक दिन बाल देवता की पूजा। यही बात याकूब कहता है एक अध्याय उसके 8 पद में, वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है, अर्थात दोगली बातें करने वाला मनुष्य। मेरे मित्रों, आप रविवार को आराधना में तो गीत गाते हैं आशीषों की बरकतें, परंतु सोमवार को अपने मित्रों के साथ परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं। आप क्रोध में आकर परमेश्वर के नाम से सबको कोसने लगते हैं। ऐसे ही स्वभाव दुचित्ते मन के कारण इस्राएल परमेश्वर के दंड का भागी बना था। होशे नबी की पुस्तक 10 अध्याय उसके 3 पद में आगे लिखा हुआ है, अब वे कहेंगे हमारे कोई राजा नहीं है, क्योंकि हमने यहोवा का भय नहीं माना, इसलिए राजा हमारा क्या कर सकता है। मेरे प्रियो, वे उपहास करके कहते थे कि दक्षिणी राज्य यहूदा को देखो, उनके पास राजा है, परंतु वह किस काम का। उनकी मूल समस्या यह नहीं थी कि उनका राजा ईश्वर भक्त नहीं है, परंतु यह कि उनका मन परमेश्वर में नहीं लगा था। मेरे मित्रों, हमारी समस्याओं के लिए सरकार को दोष देना उचित नहीं, क्योंकि मुख्य समस्या तो हमारे मन के साथ है। होशे 10 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं, इस कारण खेत के रेघारियों में धतूरे के समान दंड फूले फलेगा। इसराइल के अंतिम दिनों में वे बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज रेडियो, टीवी, पत्रिकाएं हमें बहुत बातूनी बनाती हैं। बंदर भी मनुष्य से अधिक शोर नहीं मचाते हैं। हमारी चर्चाओं में 99% बातें तो सुनने योग्य भी नहीं हैं। उनका उच्चारण ही नहीं किया गया होता तो अच्छा था, परंतु उन्हें कहने लिखने के लिए बहुत पैसा मिलता है। उनकी बातों और लेखों में मनुष्य को परमेश्वर के निकट लाने की कोई भी बात नहीं होती है, परमेश्वर के वचन की कोई बात नहीं होती है। प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता को निहारने की कोई बात नहीं होती है। हम पढ़ते हैं, वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं। वे बहुत बातें करते थे, परंतु उनकी बातें विश्वास योग्य न थी। लोग कहते हैं कि न्यायालय में सच कहने की प्रतिज्ञा करते हैं, और करते समय बाइबल पर हाथ नहीं रखना चाहिए। यदि वे झूठ बोलते हैं तो बाइबल की निंदा होती है। यदि बाइबल किसी के लिए अर्थ नहीं रखती तो बाइबल की क्या आवश्यकता है। बाइबल पर हाथ रखकर झूठी कसम खाने वालों से मुझे घृणा आती है। मेरे प्रियो, झूठी वाचा बांधने के लिए कितने विश्वासियों ने कसम खाई है, कितने लोगों ने वेदी पर आकर परमेश्वर को समर्पण किया, और कुछ ने तो अनेक बार किया, परंतु उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। हम कितनी बार कहते हैं, परंतु परमेश्वर से संबंध नहीं रखते हैं। इसलिए कहता है, इस कारण खेत की रेघारियों में धतूरे के समान दंड फूले फलेगा, अर्थात हमारे बगीचों में दंड उगेगा। होशे नबी की पुस्तक 10 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है, सामरिया के निवासी बेतावेन के बछड़े के लिए डरते रहेंगे, और उसके लोग उसके लिए विलाप करेंगे, और उसके पुजारी जो उसके कारण मगन होते थे उसके प्रताप के लिए इस कारण विलाप करेंगे, क्योंकि वह उनमें से उठ गया है। बेतावेन, क्योंकि बेतेल में एक सोने का बछड़ा रखा हुआ था और दूसरा सामरिया में, अतः वहां के निवासी एक दूसरे से जलते थे कि किसका बछड़ा बड़ा है या अधिक सोने का है। अतः बेतेल का नाम बिगाड़कर बेतावेन कहा जाता था। आगे हम पढ़ते हैं, और उसके लोग उसके लिए विलाप करेंगे। उनके विलाप का अर्थ था कि वे एक दूसरे से स्पर्धा करना चाहते थे। जैसे आज एक मनुष्य कार खरीदे तो दूसरा भी खरीद लेता है। वे अपनी आराधना में बछड़े की पूजा में एक दूसरे को हराना चाहते थे। उसके पुजारी जो उसके कारण मगन होते थे उसके प्रताप के लिए इस कारण विलाप करेंगे क्योंकि वह उनमें से उठ गया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है कि उनके याजकों के गर्व के कारण उनका धर्म विलोप हो जाएगा और उनके द्वार पर लिखा होगा इसका क्या होगा। तब हम आगे पढ़ते हैं होशे 10 अध्याय उसके 6 पद में, वह यारेब राजा की भेंट ठहरने के लिए अश्शूर देश में पहुंचाया जाएगा, एप्रेम लज्जित होगी और इसराइल भी अपनी युक्ति से लजाएगा। ये सोने के बछड़े अश्शूर के राजा के लिए उपहार स्वरूप ले जाए जाएंगे। सोने के बने ये बछड़े राजा के योग्य उपहार होगा, एप्रेम लज्जित होगा और इसराइल भी अपनी युक्ति से लजाएगा। उनकी युक्तियां किसी काम की नहीं ठहरेंगी। होशे 10 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है, सामरिया अपने राजा समेत जल के बुलबुले के समान मिट जाएगा। परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि इसराइल का राजवंश जल के बुलबुले के समान मिट जाएगा, यहूदा का राजवंश भी मिट जाएगा। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं, उसके विरोध में चल रहे हैं, परमेश्वर उन्हें दंड देता है। आज हम सब के लिए भी एक चेतावनी है, यदि हम परमेश्वर के भय में अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं तो निश्चय जानिए कि हम भी दंड के भागीदारी हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम दंड ना पाएं परंतु उसकी आशीषों को पाएं। क्यों ना आज हम अपने मनों को फिराकर उस महान परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण करें ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। मेरे प्रियो, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आप सबने आज के इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
यीशु के नाम में शिफा है,
शिफा है, शिफा है, शिफा है,
यही कलाम में लिखा है,
लिखा है, लिखा है, लिखा है।
यीशु के नाम में शिफा है,
शिफा है,
यही कलाम में लिखा है,
लिखा है।
यीशु से शैतान हारा है,
हारा है,
यीशु ने उसको मारा है। यीशु ने खून।